अध्याय नीली परछाई, जब राहत भी एक सजा बन जाए। स्थान अनन्या का कमला, देर रात। समय रात 12:05। कमरे में अब सिर्फ एक टेबल लैंप चल रहा था। उसकी हल्की पीली रोशनी दीवारों पर ऐसे फैली थी जैसे किसी बूढ़े सपने की परछाई। नीचे में सब सो चुके थे या अपने अपने कमरों में लौट गए थे। हंसी की आवाज़ें, कैमरे की क्लिक और ढोलक की थापें अब महज गुजरी हुई परछाइयाँ थीं। लेकिन अनन्या के कमरे में वक्त जैसे वहीं अटका हुआ था, ठीक उस पल पर जब उसने अजय को बाहर निकाल दिया था। वो अब भी फर्श पर बैठी थी, बाल उलझे हुए थे, चेहरा पीला, आंखें गहरी और सुर्ख। उसकी सांसों में बेचैनी थी और उसके भीतर की तड़प अब शरीर पर उतर आई थी। नहीं नहीं, आज नहीं रह पाऊंगी ऐसे, वो फुसफुसाई। उसने फिर से अपना बैग खींचा, वही बैग जिसमें कभी उसे सुकून मिलता था। उसने पूरी ताकत से जिप खोला, अंदर के चेंबर पलटे, किताबों के नीचे झांका, मेकअप पाउच खोला, ब्रश के नीचे तक देखा, पर कुछ नहीं। उसकी उंगलियां अब कांप रही थीं, माथे से पसीना बहकर गर्दन तक उतर रहा था। कहीं तो होगा, कहीं तो रखा होगा मैंने, उसकी आवाज़ में बेकाबूपन था। फिर उसने अलमारी के सबसे नीचे वाला डिब्बा खींचा और कपड़ों के बीच से एक पुराना पर्स निकाला। थोड़ी देर वो चुप रही, बस उस पर्स को देखती रही। फिर जल्दी से उसकी चेन खोली और वही था, एक छोटी सी पुड़िया, नीली, जैसे उस रात की गहराई को रंग दिया गया हो। उसने सांस रोकी, आंखें बंद की और फिर धीरे से वो पुड़िया अपने हाथों में खोल ली। एक नशे का टुकड़ा, एक छलावा, लेकिन वही तो था जो उसे दुनिया से अलग करता था, उसकी सच्चाइयों से, रिश्तों से और उस रिंग से जो अब भी उसकी उंगली में थी। उसने वो डोज ले लिया, धीरे, सधे हाथों से, जैसे कोई रिवाज निभा रही हो। और कुछ ही मिनटों में उसके शरीर की मांसपेशियां ढीली पड़ने लगीं, धड़कनें थोड़ी धीमी हुईं और पलकों पर जैसे किसी ने रुई रख दी हो। हाँ, वो बुदबुदाई, अब थोड़ी राहत मिली है। उसने सिर दीवार से टिका दिया, कमरे का तापमान अब जैसे कम हो गया हो, लेकिन उस सुकून में भी एक थकावट थी, एक बोझ। अब उसके शरीर में हरकत नहीं थी, लेकिन मन में अब भी कोलाहल था। उसकी आंखें अब शून्य में देख रही थीं और मन उन शब्दों से लड़ रही थीं जो उसके आसपास के लोग उससे बिना कहे ही कह जाते थे। मैं किसी प्यार में बर्बाद नहीं हो सकती, उसने धीमे से कहा। मैंने बहुत देखा है ये सब, मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं खाती, वो धीरे धीरे पूरे वजूद को चूस लेती है और फिर कुछ नहीं बचता। वो अब अपनी रिंग को देख रही थी, चमकती हुई, महंगी, सुंदर, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उंगली काट दी गई हो। इस घर में रहना मतलब हर दिन अपने हिस्से की सांसों को गिरवी रखना। उसने गहरी सांस ली, नशा अब पूरे शरीर में फैल चुका था। वो कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोलने लगी, खुद से, अपने भीतर की अनन्या से। मुझे यहां से निकलना होगा, नहीं तो मैं खुद को खो दूंगी। कुछ भी कहूंगी, बीमार होने का नाटक करूंगी, हॉस्टल में पढ़ाई की बात उठाऊंगी, लेकिन मुझे यहां से निकलना होगा। उसके लफ्ज अब धीरे धीरे लड़खड़ा रहे थे, लेकिन इरादा साफ था। मुझे मेरी जगह वापस चाहिए, वो छोटी सी हॉस्टल की कोठरी जिसकी खिड़की से कम मेरा मन भाग तो सकता था, यहां तो दिल भी कैद है। कमरे में नशे की गंध भर चुकी थी, पर उस गंध में भी जो सबसे तीखी चीज थी वो थी अनन्या की खामोशी। एक लड़की जिसने सब कुछ देखा, परिवार, परंपरा, प्यार का दिखावा, सगाई की रस्म, और अब वो अपने आप से एक वादा कर रही थी, मैं वहां नहीं रहूंगी जहां मेरी मर्जी की कोई जगह नहीं। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, लेकिन नींद नहीं आई, क्योंकि नशा भले उसे कुछ देर के लिए बाहर की दुनिया से अलग कर दे, उसके भीतर की आग अब भी चल रही थी।